में श्री हमारे पत्रकार साहब जी का एक भूत महाराज के साथ में महाराज जी का भाव स्वागत श्री महाराज करेंगे प्रार्थना है आदरणीय संगम स्वामी साथ हमदास जी महाराज आपको गीता के माध्यम से हम आप सबको मार्गदर्शन करेंगे। धन्यवाद।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय।
कृष्णाय वासुदेवाय।
देवकी नंदनाय च।
देवकी नंदनाय च।
नंद गोपकुमाराय।
नंद गोप
गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण हरे कृष्ण
हरे कृष्ण हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे हरे
कृष्ण कृष्ण हरे हरे
हरे राम हरे राम
हरे राम
राम राम हरे हरे
राम।
कोटि प्रणाम पूजनीय ब्रह्मलीन संत स्वामी प्रबोधानंद स्वामी जी महाराज के चरणों में दंडवत प्रणाम पूज्य स्वामी सद्गुरुआनंद जी महाराज के चरणों में नौजवान वृक्त संत हमारे साथ में जो अभी सत्संग कर रहे हैं उनको भी प्रणाम। आयोजन करने वाले इस समारोह के सारे सदस्यों को धन्यवाद करते हैं कि हमको सेवा का अवसर देते हैं और जनता के आध्यात्मिक लाभ के लिए संतों के सम्मेलन के द्वारा हरि कथा और हरि कीर्तन के माध्यम से भगवत भक्ति का ज्ञान की चर्चा के द्वारा लोगों का आध्यात्मिक उद्धार करने का ये बेड़ा उठाया है उनका पुनः धन्यवाद करते हैं। आप सबका स्वागत है। आइए कल से जहाँ सत्संग को छोड़ा था वहाँ से आगे बढ़ते हैं। तीन दिन में सत्संग शुरू किया था हमने नवे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण के विशेष रूप से राज विद्या राज योग के नाम से। तो भगवान ने विशेष विद्या क्या बताई? ब्रह्म विद्या बताई। ब्रह्म विद्या का मतलब है कि शरीर से हम भिन्न हैं, हम सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा हैं, हम भगवान का अंश हैं, ममैव अंश जीव लोके जीव भूत सनातन। भगवान कहते हैं कि सब मेरे अंश हैं, मेरे पुत्र हैं, अहम बीज प्रदा पिता मैं पिता हूँ। तो हम भगवान के बालक हैं, लेकिन भूत जीव भूत भूत शब्द साथ में लगा दिया है। भूत का मतलब है कि हम सबको भूत लगा है, भूत लगा है हमको, मतलब पांच भूतों का शरीर हमारे पीछे पड़ा हुआ है। इस शरीर के बंधन के कारण हम संसार में दुखी हो रहे हैं। हम हैं तो भगवान का अंश और सदा से आनंद के रहने, आनंद में रहने वाले हैं, सदा रहने वाले हैं, लेकिन इस शरीर के संबंध में आने से जो प्रकृति ने हमको दिया, और क्यों प्रकृति ने दिया, क्योंकि हमने इसकी इच्छा की। इच्छा करने का स्वतंत्रता भगवान ने हमको दी है, इच्छा हमने की, अनुमति भगवान ने दी, उपकरण प्रकृति ने दिए इच्छा को पूर्ण करने के लिए शरीर के रूप में। अब हमको अपनी इच्छा को बदलना है। ये सत्संग का सारा उद्देश्य है कि हमारी इंद्रिय तृप्ति की इच्छा को बदलकर भगवत भक्ति की इच्छा में परिवर्तित करना है। एक इच्छा बंधन का कारण है, जो संसार में भोग की वासना है, ये इच्छा बंधन का कारण है, और एक इच्छा साधु संगों के, साधुओं के, संतों के संग में बैठकर हरि कथा करने की है, ये बंधन से मुक्त करने की इच्छा है। है तो दोनों ही इच्छा, लेकिन एक इच्छा बंधन में डालने की है और एक इच्छा मुक्त करने की इच्छा। तो अपने को मुक्त करने वाली इच्छा करने की शिक्षा प्राप्त करने की, ये इसलिए आवश्यक है शिक्षा, इच्छा हमारी भगवत प्राप्ति की, कि संसार में बार बार आने जाने के चक्कर से मुक्त होना चाहिए, जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त होना चाहिए। भव सागर से पार होने के लिए बुद्धिमान व्यक्ति मानव जन्म में आया है, तो ऐसा मौका नहीं गंवाना चाहिए। तो क्या है भगवान, आपने जो राजगुह्य बताया क्या है, तो भगवान ने तो कह दिया बड़े प्रेम से कि मन मुझ में लगाओ, मेरे भक्त बनो। लेकिन अर्जुन ने मानते हुए भी संसार की शिक्षा देने के लिए कहा कि भगवान आपका शरण हम लें, आप में मन लगाएं, आपके भक्त बने, आपकी पूजा करें, आपको नमस्कार करें। बात तो अच्छी है, लेकिन चमत्कार को नमस्कार होता है, भगवान कुछ चमत्कार भी हैं क्या आपके? तो दसवें अध्याय में भगवान ने अपने चमत्कार जलवे विभूतियां बताई हैं कि जो कुछ भी संसार में आपको सबसे अच्छा नजर आए, समझ लो कि मेरा तेज है, मेरे कारण से वो ऐसा आपको लग रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, तो मेरी कृपा है इसलिए वो अच्छा लग रहा है। और ये कहते हुए भगवान ने दसवें अध्याय में, कल हमने कहा था, अर्जुन को कहा कि ये सब जानने की क्या जरूरत है, हमारे एक अंश में ये सारा जगत स्थित है, ये सारा जगत हमारे एक अंश में स्थित है। तब अर्जुन ने ग्यारहवें अध्याय में भगवान की प्रशंसा की, प्रार्थना की, आपने बड़ा अनुग्रह किया है हमारे ऊपर भगवान, आपने तो हमारे को बहुत बड़ा अध्यात्म ज्ञान दिया है, लेकिन कृपा करके आपने कहा कि एक अंश में ये जगत स्थित है कि हम इसको देख सकते हैं। तो भगवान ने ग्यारहवें अध्याय में जो कहा था वो करके दिखाया, जो कहा था वो करके दिखाया, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए पुराने जमाने में संत महात्माओं को एक उपाधि होती थी आचार्य, श्रीपाद शंकर शंकर आचार्य, आचार्य इसलिए कहते थे, वो आचरण से सिखाते थे, प्रवचन से नहीं, आचरण से सिखाते थे। आचरण का मतलब है अपने जीवन में जो कहते हैं उसको पहले करते हैं, तब किसी को सिखाने का अधिकार। तो शिक्षा आचरण से दी जाती है। पुराने जमाने में ऐसे कहते थे, कोई बच्चे अपने को लेके गया गांधी जी के पास, गांधी जी को कहा कि बच्चा गर्मी की मौसम में गुड़ खाता है, इसको मना कर दो, आंखें दुखेंगी, दांतें खराब होती हैं गर्मी में। तो कहा कि दो दिन के बाद आना। फिर बेचारा रिक्शा करके गया, कहा कल नहीं परसों आना। फिर दो दिन के बाद पांच बार ऐसे गया, छठे दिन जब गया तो कहा गांधी जी ने सिर्फ ये, बेटा गुड़ मत खाना। उसके पिताजी ने कहा यही कुछ कहाना था महाराज आपको, तो पांच दिन हमको चक्कर क्यों लगाए? तब गांधी जी कहते हैं बेटा मैं खुद गुड़ खा रहा था, पांच दिन मुझे छोड़ने में लगे, जब मैं छोड़ूं तब इसको कहने का अधिकार रखता हूं ना, तो जब मैं छोड़ूं तब इसको कहने का अधिकार रखता हूं। प्रायः हम कहते हैं कि भगवान का नाम जपो लोगों को प्रचार करते हुए, लेकिन हम जब जपेंगे तब लोग हमारे साथ जपेंगे। हमारा अपना जप तप होगा तब हम दूसरे के जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। वो छोटी आयु में शंकराचार्य ने पूरे भारत वर्ष के अंदर वेदों के ज्ञान का प्रचार किया, वेदांत की शिक्षा दे दी, चारों ओर सन्यासियों को चार कोनों में भेज दिया, चार मीठ बड़े पीठ बना दिए, छोटी आयु में क्यों अपने जप तप, भगवान की विशेष कृपा, भगवान साक्षात शंकर प्रकट हुए थे शंकराचार्य के रूप में, तो ये विशेष कार्य किया आचरण से, इसलिए उनको आचार्य कहते हैं। ये आचार्य रामानुज आचार्य मध्व आचार्य, इनको आचार्य इसलिए कहते हैं आचरण से शिक्षा देते हैं, बोलने से नहीं आचरण से शिक्षा देना। ये इसलिए घर में अपने बच्चों को शिक्षा देनी है तो भी आचरण से दो। आप घर में पूजा करोगे तो आपका बच्चा पूजा करेगा, आप अपने पिता को माता को बड़े को सम्मान दोगे तो आपका बच्चा आपको सम्मान देगा, आप अगर अपने बुजुर्गों के चरणों को स्पर्श करेंगे तो आपके बच्चे आपके बुजुर्ग आपके चरणों को स्पर्श करेंगे। हमारे को कई बार कहते हैं बच्चे को समझाओ ये हमारी मानता नहीं है, हम पूछे तुम अपना मानते हो सास ससुर का, क्या तुम अपने माता पिता का मानते हो, नहीं मानते तो ये कहां से मानेगा। आचरण से शिक्षा देने की आवश्यकता। एक स्त्री बहुत बड़ा परेशान पति को किया कि ये तेरा पिताजी घर में बहुत बड़ा खांसी करके परेशान करता है, ये तो हमारे से सुबह से शाम तक झगड़ा करता है, इसको हरिद्वार छोड़ के आओ। बेचारा दुखी हो गया, पति उसको लेके गया जंगल, एक बहुत घने जंगल में पहुंचा, उधर बिठाया, बोला पिताजी आप बैठे, मैं आपके भोजन पानी की व्यवस्था करता हूं। लड़का पीछे मुड़ा तो बाप हंसने लगा, बहुत जोर जोर से हंस रहा है, तो बेटा पीछे मुड़ के देखता है पिताजी हंस क्यों रहे हो। पिताजी कहता है बेटा मैं मेरे बाप को भी यहीं छोड़ के गया था, मुझे मालूम है तुम वापस नहीं आओगे, मैं बाप मेरे को यहां छोड़ के गया था। बेटे ने समझा इसका मतलब मेरा बेटा भी मेरे को यहां छोड़ के जाएगा, इसलिए बाबा चलो वापस। पिछनी को कहा कुछ भी हो ये बाबा यहां रहेगा, मैं मेरे से भी ऐसे ही होने वाला है जैसे इससे हो रहा है, तो जो आप करोगे वो वापस आपके पास आएगा। आप बच्चे को कहते हो कि बाजार से जाओ एक सिगरेट का पैकेट लाओ और चाहते हो कि बच्चा आपका सिगरेट नहीं पिए, ये संभव नहीं है। आप घर में मदरा पियोगे और बच्चे आपका मदरा नहीं पिए, ये संभव नहीं है। आप पूजा नहीं करोगे तो आपका बच्चा भी पूजा नहीं करेगा। आप घर में पूजा पद्धति करो, और कलयुग में माताओं ये सारे किले की दीवार आखिरी आप है, मातृशक्ति किले की दीवार है। अब पुरुषों के पास समय नहीं है, सुबह बेचारे जाते हैं और रात को लौटते हैं, इनके पास तो बच्चों को देखने का भी समय नहीं रह गया है। आप घर में अगर आध्यात्मिक का रखोगे, एक आध्यात्मिक वातावरण रखोगे, कुछ भगवान की भक्ति कीर्तन घर में रखोगे तो बच्चों पे अच्छे संस्कार हो गए। अरे मातृभाषा कही जाती है, पितृभाषा कभी आज तक नहीं कही है, जो बच्चा बोलता है उसको माँ की भाषा बोलते हैं, तो माँ है घर में शिक्षा देने वाली। आप ये तो बहुत अच्छा लगता है कि इस पंडाल में भी प्रतिदिन माताएं तो 2-4-5 नजर आती हैं, पिता हमारे बेचारे जिनको घर में बैठने के लिए मना करते हैं कुछ तो बाहर घूम के आओ, बेचारे यहाँ आ जाते हैं प्रायः, बाकी दुकान धंधा छोड़ के आने वाला कोई नहीं नजर आता है। यहाँ 2-4-5 ये पुरुष हैं जो रोज दिखते हैं, बाकी प्रायः तो कोई इस तरफ बैठने वाला है नहीं। ये इस बात का प्रमाण है कि सारा आपके ऊपर अभी दारोमदार है, सारा आध्यात्मिक शिक्षा घर के अंदर करनी है तो ये माताओं के ऊपर भार पड़ता है। अपने घर में आध्यात्मिक वातावरण बनाओ। ये भगवान की कथाएं पहले कोई शास्त्र पढ़ने जाने की जरूरत नहीं थी, दादी माँ सिखा देती थी। दादी माँ बच्चों को रामायण और महाभारत की कथाएं बताया करती थी, वो कथाएं सुन के बच्चों के अंदर संस्कार होते थे। बच्चे तो आपस में लड़ते थे कोई छोटी चीज के लिए, तो माँ कहती थी अरे क्या बेटा तुम लड़ रहे हो, भरत जैसा भाई होना चाहिए, राज मिला तो भी छोड़ के जाके खड़ाऊ को राज के ऊपर रख दिया, तू दो टाफी के लिए आपस में लड़ रहा है मूर्ख। ऐसी छोटी बात बच्चों के अंदर इतने बड़ी सिद्धांत रामायण का दे के उनका जीवन में परिवर्तन लाती। कोई स्त्री कोई कोई ऐसी बात करती थी अरे क्या कहाँ कर रही हो सीता जैसी, ऐसे नारी तो सीता जैसी होती है कि दुख में भी 14 साल भगवान के साथ चली गई थी, आप थोड़ा दुख आ गया तो इतना चिल्ला रही हो, शांति नहीं हो सकती क्या। घर के अंदर शिक्षा ये घर के अंदर माताएं दिया करती थी, तो ये आचरण आपको घर में ठीक तरह से सिखाना पड़ेगा। तो आचरण की बात है, भगवान ने जो कहा 10वें अध्याय में 11वें अध्याय में वो सब अर्जुन को दिखाया, विश्व रूप विराट रूप के रूप में दिखाया। अर्जुन ने उसको देख के आश्चर्यचकित भी हुआ और भयभीत भी हुआ। आश्चर्यचकित ये हुआ कि ये मेरा मित्र जो मेरे साथ बैठा है, मेरे घोड़े हांक रहा है, मेरा सारथी बना हुआ है, ये सारी त्रिलोकी इसमें समाई हुई है, कितना बड़ा महान है। और भय इसलिए लगा कि एक और रूप भी देखा जो किसी ने आज तक नहीं देखा था। विराट रूप तो भगवान ने कौरवों की सभा में भी दिखाया था, विश्व रूप तो माँ यशोदा को अपने मुख में भी दिखाया था 2 बार, लेकिन ये रूप किसी ने नहीं देखा था, वो काल रूप था। 11वें अध्याय में भगवान ने विश्व रूप के साथ काल रूप दिखाया है। काल अस्मी लोक क्षय प्रवृद्धो, मैं काल हूँ, सारे लोक को सर्वनाश कर देता हूँ। आपको देखना है तो अर्जुन देखो, ये भीषम, ये द्रोण, ये कर्ण मेरे दांतों के बीच में कैसे चूर्ण हो रहे हैं देख लो, ये सारे पहले ही मर चुके, मैंने मार दिए। काल रूप भगवान ने अपना दिखाया, ये इससे पहले किसी ने नहीं देखा। भगवान के इस काल रूप का दर्शन करके अर्जुन भयभीत हुआ, लेकिन भगवान ने कहा निमित्त मात्र भव सव्यसाचन। हे अर्जुन तुम निमित्त मात्र बन। सव्यसाचन अर्जुन का नाम है, जो दोनों हाथों से बाण चला सकता है उसको सव्यसाचन बोलते हैं। सब तो एक हाथ से चलाते हैं लेकिन वो दोनों हाथ से चला सकता है। तुम निमित्त मात्र बन, काम तो हमने कर दिया है। ऐसे चैतन्य महाप्रभु ने इस पृथ्वी के ऊपर कह दिया है कि पृथ्वी ते आचे यत्र नगरादि ग्रवाम सर्वत्र होए मोय नाम प्रचार। जितने इस पृथ्वी के ऊपर नगर और ग्राम है सब जगह हरि नाम का प्रचार होगा, भगवान के हरि बोल हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार विश्व के गले गली में होगा, कोने कोने में होगा। ये तो भविष्यवाणी महाप्रभु के द्वारा हो गई चैतन्य महाप्रभु के, तो इसका मतलब विश्व में ये होगा। लेकिन ये कोई नहीं सोच रखा सका कि भारत की सीमाओं से बाहर भगवद गीता और भागवत का प्रचार, राम की स्थापना और कृष्ण की स्थापना भारत से बाहर कैसे हो पाएगी, ये बात समझ में नहीं आई। लेकिन निमित्त मात्र भव सावर, किसी को निमित्त मात्र बनना पड़ा। एक महात्मा वृंदावन से निकला 70 साल की आयु में जब आदमी वृंदावन में जाता है शरीर त्यागने के लिए, वो महात्मा वृंदावन को छोड़कर पानी के एक माल उठाने वाले जहाज में, भार उठाने वाले जहाज में यहाँ से पाश्चात्य देश में अमेरिका में पहुंचा। सन्यासी कभी जाता नहीं था सात समुद्र पार, लेकिन एक बहुत बड़ा प्रयोग करने की आवश्यकता पड़ी। एक महात्मा ने भारत में बैठ के ये कहा कि ये देश हजारों सालों से गुलामी में जीता आ रहा है, मुसलमानों की गुलामी में भी ये जिया लेकिन धर्म के ऊपर अटल रहा, लेकिन अंग्रेज की गुलामी ने इसके दिमाग को ऐसा खराब किया है, जो चीज पाश्चात्य देश की बनी हुई है उसको महत्व हो, मेड इन यूएसए चाहिए, मेड इन जर्मनी है, ये तो विदेशी है बहुत अच्छी है, अपने देश की चीज के लिए इसके पास सम्मान कम रह गया। चलो एक प्रयोग करते हैं, पाश्चात्य देश में जाके गीता भागवत का प्रचार करो, उन लोगों को भक्त बना के या साधु बना के लाओ, तब ये भारत वाले जागेंगे जो सो चुके हैं। तो ये बहुत बड़ा एक प्रयोग किया गया। एक महात्मा ये भारत के संदेश लेकर, ये धन है, वो महात्मा कहा करते थे तुम कहते हो कि हमारा भारत गरीब है, अरे भारत का तो ये धन रतन ऐसा धन है कि इस धन के दो श्लोक भी आपको भगवद गीता के आते हैं, विश्व के किसी कोने में जाओ लोग आपके चरणों में आके बैठेंगे, अपना सब कुछ आपको कुर्बान करके दे देंगे, ये आपका धन है, इस धन को भुलाने से गरीब हो गए हो आप। एक बूढ़ा व्यक्ति था, कहीं बाजार में बैठ के दुआ चार आना आठ आना फिर भीख मांगता था, पुरानी एक ट्रक पे पेटी थी उसके ऊपर बैठा करता था, तो लोग चार आना आठ आना देते थे। एक समझदार ने कहा ये पेटी तो एंटिक है, ये तो इसकी कीमत तो करोड़ों रुपए होनी चाहिए आज के जमाने में, ये तो पुराने जमाने की पेटी है। बोला दादाजी के जमाने की, यहाँ पड़ी है, मैं इसके ऊपर बैठा हुआ हूँ। बोला उतरो देखें इसमें क्या है। उसको उठा के खोलता है तो पेटी के अंदर तो हीरे जवाहर पड़े थे, और हीरे जवाहर की पेटी के ऊपर उठ बैठ के और हाथ टांग के दुनिया से मांग रहा था। ऐसे हमारी स्थिति है, अरे ये भारत में जन्म लिया है, ये भगवत गीता भागवत ये वेद ये हमारे रग रग में समाये हुए हैं, और इन चीजों के होते हुए हम कहते हैं कि हम भिखारी हैं। आप देना सीखो संसार में, लोग झुकना आपके सामने सीख जाएंगे, आप लेना जाते हो इसलिए आप भिखारी हो जाते हो, देना चाहो। तो महाराज जब 70 साल की आयु में यहां से गए तो उन लोगों को कहा देखो मैं तुम्हारे देश में कुछ विद्या प्राप्त करने नहीं आया हूँ, अमेरिका में पढ़ने के लिए नहीं आया हूँ, न धन कमाने के लिए आया हूँ, न भोग विलास करने के लिए आया हूँ, मैं 70 साल की आयु में हूँ, मुझे भोग की लालसा नहीं है, धन की लालसा नहीं, मैं तुम्हें देने आया हूँ, तुम दुखी हो तेरा दुख दूर करने के लिए आया हूँ, तुम्हारे पास अनमोल हीरा है लेकिन तुम उसको पहचान नहीं पा रहे हो, मैं आपको वो शिक्षा देने आया हूँ जो आपसे गुम हो गई है। एक कथा पुराने जमाने में बताया करते थे, आपने पता नहीं कभी सुनी है कि नहीं सुनी है, 19 ऊंट की कथा बोलते हैं इसको, सुनिए है कभी। एक बहुत बड़ा पैंच था, पैंच जी जो थे बड़े धर्मात्मा थे, साधु संतों को बुलाते थे, जैसे आपके यहाँ खुराना साहब बुलाते, ये सारे भक्त बुलाते हैं, ऐसे साधु संतों को बुलाया करते थे, सम्मेलन किया करते थे ताकि प्रजा सुखी रहे, प्रजा आध्यात्मिक रहे। लेकिन संत का वो अपने बड़े आदमी का बेटा सुधर जाए ये जरूरी नहीं है, बिगड़ना बहुत ज्यादा संभावना होती है। बड़ा और धनी के बेटे के बिगड़ने की संभावना ज्यादा ही होती है। तो बच्चा उसका बिल्कुल बिगड़ चुका था, तो पिता जाने से पहले एक वसीयत लिख के गया। वसीयत में उसने ये लिखा कि मेरी जो संपत्ति है इसका आधा तो देना मेरे बेटे को, चौथा हिस्सा देना मेरी पत्नी को, और पांचवा हिस्सा मेरे सेवक नौकर को देना जो सेवा करता है। और ऐसी संपत्ति के अंदर उनके पास ऊंट हुआ करते थे, पुराने जमाने में आने जाने के लिए ऊंट थे। बोला 19 ऊंट है मेरे पास, इस 19 ऊंट को भी बांटना ऐसे, आधा मेरे बेटे को देना, चौथा हिस्सा मेरी पत्नी को, पांचवा हिस्सा मेरे सेवक को देना। एक दिन भगवान की कृपा इस संसार में जो आया है वो जाएगा, तो वो तो पेंच छाप तो चले गए, तो पीछे सबने बैठ के वसीयत को पढ़ा। वसीयत को पढ़ के दान तो जमीन तो बांट दी आधा करके, चौथा हिस्सा पांचवा हिस्सा पैसे भी बांट दिए। अब ऊंट को बांटने का समय आया, ऊंट कैसे बांटे, 19 ऊंट का आधा कैसे करें, बड़ी समस्या हो गई। बड़ी समस्या हो गई तो क्या किया, समस्या का समाधान के लिए एक महात्मा के पास आदमी को भेजा कि अब निकट में अपने संत रहते हैं, संत जी को लेके आइए। वो महाराज पधारेंगे तो उनसे पूछेंगे शंका का समाधान कैसे हो। पंडित जी एक, महाराज जी एक वहां से संत आए, उस जमाने में आने का साधन भी गाड़ी नहीं ऊंट ही था। महाराज ऊंट के ऊपर चढ़ के आए, बड़ा आए तो शोक प्रकट किया कि तो बड़े अच्छे संत थे, हम सत्संग करने आया करते थे। बोला वो तो भगवान को प्यारे हो गए, लेकिन अब समस्या ये कि वसीयत लिख के गए हैं, इसका हमने बाकी तो निवारण कर दिया, लेकिन ये 19 ऊंट को कैसे बांटे। ओ बोला क्या करना है, बोला आधा इसके बेटे को देना है, बोला और बोला चौथा हिस्सा इसकी पत्नी को देना है, पांचवा हिस्सा इसके सेवक को देना है, नौकर जो सेवा करता था। बोला 19 ऊंट कहां है, ले आओ यहां खड़ा कर दो। 19 ऊंट खड़े कर दिए। बोला मैं चढ़ के आया, वो ऊंट इनके बीच में खड़ा करो। ओ जो चढ़ के आया था महात्मा वो ऊंट भी खड़ा कर दिया। बोला अब इसमें से आधा करके 19 और 1 कितना हो गया। बोला इसका आधा इसके बेटे को दो, कितना दिया, चौथा हिस्सा इसकी पत्नी को दो, कितना हुआ, 5। बोला पांचवा हिस्सा इसके नौकर को दो, कितना हुआ, 4। बोला 19 पूरे हो गए, मेरा ऊंट मेरे को दो, वापस जाओ। बोला ये कैसे आपने कर लिया। बोला ये तुम्हारा पिता बड़ा बुद्धिमान था बेटा, वो तुमको कहना चाह रहा था इस संसार में 19 ऊंट बांटना जितना मुश्किल है ऐसा तुम्हारा जीना मुश्किल है। जब तक किसी साधु के संत के शरण लेकर एक भगवान को जीवन में नहीं जोड़ोगे तब तक तेरे दुनिया में समस्या का समाधान नहीं होगा। एक भगवान जीवन में जोड़ोगे तब तुम्हारी समस्याओं का समाधान होगा, और वो भगवान भी कोई साधु संत महात्मा तुम्हारे को गुरु प्रसाद जब गुरु प्रसाद के रूप में देगा तभी तुम्हारे जीवन का कल्याण होगा। तो ये मो महात्मा जाके पाश्चात्य देश में ये संदेश देने लगा कि मैं देने के लिए आया हूं, मैं तेरे पास वो तेरे दुख की दवा देने के लिए आऊं, आओ बैठो मेरे पास, आओ मैं आपको भगवान का संदेश सुनाता हूं। वो महात्मा ने ये पाश्चात्य देश में भगवत गीता का भागवत का संदेश सुनाया तो वो लोगों के जीवन में परिवर्तन आया, वो लोग साधु बन गए। वो लोग साधु बन के जब भारतवर्ष में वापस लौटे और गली गली में कीर्तन करना शुरू किया तो हमने पहली बार उसको देखा तो हमारा माथा ठनका, अरे कहां हमारे ये संस्कृति हमारी, ये ब्राह्मण का हमारा घर, ये हमारा जन्म, ये हमारा मंदिर, हम ये छोड़ के डॉक्टरी पढ़ रहे हैं और ये हमको भगवत गीता पढ़ा रहे हैं, क्या हो गया हमको। वो हमारे अंदर में आत्मा की जागृति हुई और हमने उस काम को जहां था डॉक्टरी उसको डॉक्टरी की जगह पर, कई लोग डॉक्टर बनेंगे, बीमार होना लोग बंद थोड़ी कर देंगे, ये काम कौन करेगा। तो एकदम ऐसे हजारों लाखों लोग भारत के अंदर आध्यात्मिकता में जागृति आई उस प्रयोग की सफलता के कारण। तो आज विश्व के कोने कोने में बहुत बड़ा इतिहास में परिवर्तन आया है। ये इतिहास भारत का लिखा जाएगा 5000 वर्षों के बाद, हम नहीं रहेंगे तब। उस वक्त कोई अफ्रीका के गंदर राधा कृष्ण का मंदिर मिलेगा, सीताराम लक्ष्मण हनुमान का मूर्ति मिलेगी, उनको ठाकुर जी विराजमान मिलेंगे रशिया के किसी कोने में, और भगवत गीता का अनुवाद रशियन अरबी भाषा में मिलेगा। तो दुनिया के कोने कोने में उस वक्त इतिहासकार लिखेंगे कि भारत संस्कृति विश्व के कोने कोने तक फैली हुई थी। ये सब इतिहास के पन्नों के अंदर आने वाला भविष्य में लोग देखेंगे कि पहले भी भारत विश्व का गुरु था और बीच में किसी कारण से हम पीछे हट गए, तो फिर वापस ये अभियान किया गया और विश्व के अंदर ये संदेश पहुंचाया गया। तो बात कर रहे थे निमित मात्र भव सवे साचन। ये जब अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि युद्ध तो तुम करने के लिए केवल तीर चलाओ, ये तो सब मार के तो पहले ही मैंने रख दिए हैं, ऐसे भगवान के नाम का प्रचार तो होगा ही, हम में से कोई उठ के इस काम में हाथ बटाएगा तो श्रेय आपको मिलेगा, श्रेय हमको मिलेगा। भगवान अपने भक्तों को श्रेय देना चाहते हैं, भगवान अपने भक्तों के प्रशंसा में बहुत प्रसन्न होते हैं, श्रेय देने में आनंद लेते हैं, और भक्तों के लिए भगवान को बहुत बड़ा स्नेह और प्रेम है। भक्त वत्सल भगवान का विशेष एक नाम है, ये भगवान का स्वभाव है, भक्त वत्सलता उसका स्वभाव है। इस भक्त वत्सल जो भगवान, वत्स पता है किसको कहते हैं, बछड़े को कहते हैं, जैसे गाय बछड़े के पीछे जाती है ना, ऐसे भगवान अपने भक्तों के पीछे जाते हैं और उसका लालन पालन करने में। अरे भगवान नरसिंह देव ने साक्षात प्रहलाद को गोद में बिठा के चाट रहे थे, जैसे ना बछड़े को गाय चाटती है ऐसे चाट रहे थे, ऐसे चाटते हुए नरसिंह देव ने देखा कि प्रहलाद को तो मुझसे ज्यादा आनंद मिल रहा है। आनंद तो बाप को मिलता है, जब पिता को मिलता है, जब बेटा गोद में बैठता है, लेकिन बेटे को जो सुख मिलता है वो तो पिता को पता नहीं है, बेटे को बहुत ज्यादा सुख मिलता है। उस दिन नरसिंह देव ने देखा कि इसका मतलब है कि सुख तो बेटे को ज्यादा मिलता है, तो हमको भी किसी की गोद में खेलना चाहिए। अब गोद किसकी में, नरसिंह देव पीछे मुड़ के देखते तो खंभे से निकले, अब खंभे की गोद में कहां से बैठे। उस अवतार के बाद, नरसिंह देव अवतार के बाद भगवान ने ये निर्णय ले लिया, आज के बाद कभी भी इस पृथ्वी के ऊपर अवतार लेना पड़ेगा अपने किसी शुद्ध भक्त को माता पिता बना के उसकी गोद में खेलूंगा और ये आनंद में लूंगा, वात्सल्य भाव में भगवान के बच्चों के गोद में। बच्चे को जो आनंद मिलता है वो माता पिता को नहीं मिलता है। तो 11वें अध्याय में भगवान ने अपना विश्व रूप का दर्शन कराया, अर्जुन भयभीत भी हुआ, आश्चर्यचकित भी हुआ, भयभीत काल रूप को देखकर हुआ आश्चर्यचकित, अपने मित्र को त्रिलोकीनाथ के रूप में देखकर बड़ा आश्चर्यचकित भी हुआ, हाथ जोड़ के कह दिया विष्णु रूप का दर्शन कराओ। भगवान ने विष्णु रूप का दर्शन करा के कहा यह तो वेद से भी नहीं मिलता है, दान से भी नहीं मिलता है, तप से भी नहीं मिलता है। और फिर भगवान अपने श्याम सुंदर रूप में खड़े हो गए, तब संजय ने कहा अब वो अपने असली रूप में खड़े हैं। तब अर्जुन ने ये श्लोक कहा इदम मानुषम रूपम, ये जो मेरे जैसा तुम्हारा मानुष रूप है ना, सोमयम जनार्दन, ये बड़ा शीतल है, इसको देखने ने मेरा चित्त शांत हो गया है, मुझे बहुत बड़ा आनंद मिला है इसको देखकर, क्योंकि इस रूप से मैं, मेरी आसक्ति है इसी, यही रूप मेरा सारथी बन के मेरी रक्षा कर रहा है। तो जो विराट रूप भगवान का ऐसे है जैसे किसी बेटे का बाप आर्मी में कर्नल हो और लड़ाई होती हो और चारों ओर बम बरसता हो तो वहां बेटा जाके थोड़ी गले मिलेगा पिताजी के, लेकिन भगवान का ये प्रेम का स्वरूप ऐसा है कि जिसको, जिसकी गोद में बैठा जा सकता है, जिसके चरणों में जाके लपेटा जा सकता है, जिसको आलिंगन किया जा सकता है। तो भगवान का ये प्रेम का स्वरूप जो है इस रूप के ऊपर, फिर भगवान श्लोक कहते हैं, दो श्लोक ये शाम के समय में हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे, 11वें अध्याय की समाप्ति के दो श्लोक जो हैं, अभी यहाँ वाणी को विराम देते हैं। हरे कृष्णा, धन्यवाद। हरे कृष्णा,
हरे कृष्णा,
हरे कृष्णा,
हरे कृष्णा,
कृष्णा
कृष्णा,
हरे हरे,
हरे
हरे,
हरे राम,
हरे राम,
हरे राम,
राम
राम,
हरे हरे,
हरे हरे,
हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे,
हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे,
हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे,
हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे,
हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे,
हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।